अगर एक शख्स चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो तो उसकी कामयाबी की ख्वाहिश उसके फेल होने के डर से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और एक और चीज भी कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि ये एक कामयाबी आपकी फाइनल है तो ये बिल्कुल गलत है। कामयाबियां जिंदगी में भरी हुई हैं और बिल्कुल ऐसे ही नाकामियां भी जिंदगी में भरी हुई हैं, और नाकामियों का से भी डरना गलत है। और नाकामियों को ये कह देना कि नाकामी, एक नाकामी मिली तो उसके बाद जिंदगी मेरी ख़त्म हो गई, बस सब कुछ रुक गया, ये भी गलत है। नाकामी इत्तफाकन इंसान को बहुत सी चीज़ें सिखाती है और ऊंचा, और एक जो बहुत अच्छी चीज़ जो नाकामी से इंसान को मिलती है वो ये है कि इंसान को ऊंचा उड़ना सिखाती है। और आप जब ऊंचा उड़ेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो कभी भी नाकामी से भी ना डरें और कभी भी कामयाबी को भी आखिरी कामयाबी ना समझें। सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि इंसान हमेशा कोशिश करता रहे कि वो ऊंची से ऊंची परवाज़ करे, सीढ़ियां चढ़ता रहे, कभी भी मत रुके, बेशक कोई भी हालात हों, कैसे भी हालात हों। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और कामयाबी की सीढ़ियां जो है वो चढ़ते जा रहे होंगे। मेरे साथ रुबाब भी मौजूद हैं, सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत
में। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ खुर्रम, और अपने प्यारे प्यारे अजीज़ और खूबसूरत से नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। इस उम्मीद से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे प्यारे नाज़रीन बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी एनर्जी से भरी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रुबाब। और हमारा हफ्ते का मौजू जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि इंसान राजी रहे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ उसके पास है या राजी ना रहे, ये बहुत जो अहम सवाल है, इसके बारे में देखते हैं रुबाब क्या कहती हैं।
और अगर मैं एक बात ये कहूँ कि इस अहम बात का जो हमारी जो इस अहम बात का अगर हम सवाल जो है सवाल का जवाब ही हम ढूंढ लें तो हमारी ज़िंदगी में आपको पता है बहुत सी मुश्किलात हल हो सकती हैं। राज़ी होना अपनी उन तमाम चीज़ों पर जो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई हैं, वो तमाम नेमतें, वो तमाम रहमतें जो अल्लाह ने हमको दी हैं, अगर हम उन्हीं पर राज़ी हो जाएँ तो नाज़रीन मैं ये बोल सकती हूँ दावे से कि हम काफ़ी हद तक मुश्किलों से बच सकते हैं।
अच्छा रुबाब, यहाँ पर मैं आ रहा था स्टूडियो में तो एक चीज़ मेरे जहन में बार बार आ रही थी और मेरा जी चाह रहा था कि ये चीज़ मैंने तो समझ ली है, अपने दोस्तों को भी मैं ये बात बार बार बताऊँ और हम लोग बार बार ये बात करते भी हैं। बात यह है कि इंसान को, एक शख्स को चाहिए कि वो अपने हाल में ज़िंदगी करे, अपने प्रेजेंट में ज़िंदगी करे। क्योंकि देखें रुबाब, आप खुद अगर थोड़ी सी इस नुक्ते पे दिक्कत करें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप माजी में ज़िंदगी करें आप ढीले रहेंगे, एनर्जी नहीं है बदन में। अगर आप फ्यूचर में ज़िंदगी कर रहे हैं, आने वाले कल में ज़िंदगी कर रहे हैं, तब भी जो है कोई बदन में एनर्जी नहीं। क्यों? क्योंकि मसलन असल फ्यूचर से मुराद मेरी ये नहीं है कि आप 10 साल बाद के बारे में सोचें, फ्यूचर से मुराद मेरी ये है कि यही आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैंने अभी मेरा प्रोग्राम है, उसके बाद जो है मैंने फिर वहाँ जाना है, फलां जगह जाना है, वो काम कैसे करूँगा, तो सब कुछ जो है वो
धर्म भरम सा हो जाए। बिल्कुल, और यही बात है, देखें जो लोग माजी में जो ज़िंदगी करते हैं वो ये होता है कि वो माजी से बाहर निकलना नहीं चाहते, या वो जो गम है जो उनके साथ माजी में जो हादसा पेश आए उसी में रह से जाते हैं।
अच्छा, और एक बात है, हादसा के साथ साथ अच्छी यादें भी हैं, उनमें भी नहीं रहना चाहिए।
बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक जगह जिंदगी ठहर सी जाती है। और जो लोग हाल के लिए काम कर रहे हैं कि हम हाल पे जाएं और यानी आइंदा के लिए जमा कर रहे हैं, या हमारा फ्यूचर अच्छा हो, या हमारा हाल, या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, उनके लिए भी ये है कि वो आज के दिन को नहीं जी रहे।
बिल्कुल, आज के। और दूसरी बात ये कि जब आप आज के दिन को नहीं जी पा रहे तो आप अपना फ्यूचर भी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जब आप मिसाल के तौर पर जब मैं अभी यहाँ पर प्रोग्राम में आता हूँ तो मैं अगर ये सोचने लग जाऊं कि मैंने फलां काम करना है, शाम को वहां जाना है, दोपहर को ये करना है और 10 बजे यहां जाना है, तो फिर तो मैं तो प्रोग्राम नहीं कर
पाऊंगा। वो एनर्जी चली जाती है सोच के हाल के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए हम सोच रहे हैं, तो वो एनर्जी हमारी अभी जो हमारे पास है, जैसे अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम खुश हैं, वो एनर्जी हाथ से निकल जाती है इस सोच में कि मैंने घर जाके खाना बनाना है, बच्चे को संभालना है, ये करना है, वो करना है, तो बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाती है।
बिल्कुल, लेकिन एक चीज यहाँ रुबाब, थोड़ी सी हम जो आईमा की तरफ से एक बात करते हैं और वो ये है कि आईमा ने कहा है कि फरमाया है कि माजी से सीखो, ये नहीं कि माजी में रहो, माजी से सीखो। और ये तो बात आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है कि माजी से सीखना चाहिए, लेकिन ये कि माजी में बैठे रहें, मैंने बहुत से लोगों के बाद इस तरह भी देखा है कि वो जो अपनी अच्छी उनकी यादें हैं माजी से, उनमें बैठे रह जाते हैं कि जी मैं उस जमाने में जो है मैं वर्जिश करता था और जी मेरी बॉडी शॉडी हुआ करती, भाई अभी क्या
हसरत सी रह जाती है, काश मैं ऐसा ही रहता,
ऐसा ही रहता। बिल्कुल ठीक है, ऐसा। दूसरी बात, تو رہ بھی نہیں سکتا بندہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا میرے بچپن کے دن, وہ ایک گانا بھی تھا کہ میرے بچپن کے دن کتنے سہانے تھے, وہ میرے بچپن کے دن گزر گئے ہیں, اب جو ہے
ہم پھر سے بچے تو خیر نہیں بن سکتے. تو ہم کو یہ کرنا چاہیے جو آج ہماری جو عمر ہے اس عمر, یا جو آج جو ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کے لمحے لمحے سے, یا جو ہمارے پاس جو بہترین وقت ہے اس وقت کو اور بہترین بنائیں, اس طرح کچھ کام کریں اپنے لیے جو ہمارے لیے فائدے مند ہو, اوروں کے لیے فائدے مند ہو, تو بہت ہی بہترین.
یہاں پر جو باب نے بات کی اس میں اس طرح بھی اگر بتاؤں آپ کو کہ بچپن تو سہانا تھا, جوانی کو بھی سہانا بنائیں اور اچھے کام کریں, ایسے کام کریں جس سے آپ کو پورا آپ کا بدن جو ہے, آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ مثبت انرجی سے بھرے رہیں, آپ کا گھر مثبت انرجی سے بھرا رہے. اور اس میں سب سے پہلا قدم جو ہے, یقین مانیں کہ یہ بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, سب سے پہلا قدم جو ہے وہ جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کے پاس ہوتی ہے, جتنا انسان نماز روزے اور قرآن کی طرف جاتا ہے, جتنا آپ قرآن کی تلاوت کریں اتنا ہی آپ کو وہ مثبت انرجی کا آپ کو احساس ہوگا, پتہ چلے گا.
بالکل ایک چھوٹی سی بات ہی ہم کر لیتے ہیں, چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. آپ صبح جب نیند سے اٹھتے ہیں, آپ کی آنکھ جب کھلتی ہے, پہلا کلمہ جو آپ کے منہ سے نکلے بسم اللہ کا نکلے, آپ دیکھیے آپ جب وہ اپنے بستر سے اترتے ہیں ایک انرجی کے ساتھ اتریں گے, یا اس کے بعد آپ جو بھی کام کرنا شروع کریں گے وہ انرجی سے شروع ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ابھی ویسے ڈھیلے اٹھے ہیں, گڑائی لینا شروع کر دیں, اور وہ انرجی آتی ہی نہیں ہے جسم میں. اور میری تو خود کی یعنی شخصاً ہمیشہ ایک کوشش ہوتی ہے جب آنکھ پہلی بار میری جو کھولے صبح تو وہ بسم اللہ کے ساتھ ہی کھولے, تاکہ خدا کی برکت جو ہمارے پہ ہمیشہ رہتی ہے, اللہ کا شکر ہے وہ اور رہے, خدا کی رحمت اور نعمتیں ہم پہ نازل ہوتی
ہے. کیونکہ انسان جو ہے وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے چھوٹی موٹی غلطیاں کرتا رہتا ہے, بہرحال گناہ کرتا رہتا ہے, تو یہ چیزیں اگر ساتھ ساتھ چلتی رہیں تو وہ ایک قسم کا جو ہے بہرحال کور مل جاتا ہے. چلتے ہیں ہمارے پاس جو ہے رباب, ایک ہم نے جا کے سننی ہے ایک داستان, اور داستان ہے بہلول دانا کی, اور جو ہے اس میں جو جیسے کہ ہمارے ناظرین کو پتا ہے کہ بڑے اچھے نکات آپ کو انسان کو سیکھنے میں ملتے ہیں, تو بہلول دانا کی جو ہے داستان وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں, اینیمیشن ہے, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, پروگرام کو آگے چلائیں گے. جی ناظرین, آپ لوگوں نے بہلول دانا کی داستان سنی, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اب وقت ہوا ہے ہمارا آہستہ آہستہ یہ کہ ہم لوگ گفتگو کی طرف جائیں, لیکن اس سے پہلے کہ جیسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس ہفتے کا موضوع یہاں پر لکھا ہوا, اس ہفتے کا موضوع جو ہے وہ ہے راضی ہونا, زندگی سے راضی ہونا, اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اس سے راضی ہونا. تو دیکھتے ہیں ہم لوگ کتنے راضی ہیں, کتنا شکر کرتے ہیں. بہرحال اس پہ بات چلے گی, لیکن ابھی چلیں گے رباب کے پاس تاکہ رباب گفتگو کے سیگمنٹ کو شروع کر سکیں. جی رباب,
بہت شکریہ خرم. اور ناظرین آپ کو پتا ہے آج اتوار کا دن ہے, اور اتوار کے دن ہم ننھے منے پیارے پیارے فرشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے, اگر میں بولوں میرا پسندیدہ موضوع ہے, یا مجھے یہ کام جو بچے کرتے ہیں مجھے بہت پسند ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہوگا, بچے انگوٹھا جو چوستے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے. مجھے بہت پسند ہے جو بچے انگوٹھا چوستے ہیں, لیکن کیسز کی روک تھام کی جائے, جو کہ ایک حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد تھوڑا یہ بچوں میں تھوڑے سے مسائل پیش آ جاتے ہیں. چلتے ہیں ڈاکٹر سلیل فاطمہ کی خدمت میں, ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیسے ڈاکٹر صاحب؟
الحمدللہ.
اور بہت بہت شکریہ آپ تشریف
لائے. آپ کا بھی.
اور ایک بہت اہم موضوع, مزیدار موضوع, بچے جو انگوٹھا چوستے ہیں, یہ اکثر انگوٹھا چوسنے کی عادت ہے, پیدائشی طور پہ آتی ہے یا ہوتی ہے, کیسا ہے, کیا ہے, نیچر ہے بچے کی یا نہیں؟
قدرت نے اس ریفلیکس کو اس لیے پیدا کیا ہے بچے میں, تاکہ جب بچہ دودھ پینے کی عمر تک پہنچے, جب پیدا ہو, تو اس کے بعد اس کو آسانی اس عمل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بیسیکلی یہ ریفلیکس پیدا کیا گیا ہے. اس لیے آپ نے بات صحیح کہی کہ ایک محدود عمر تک یہ عادت, جب بچہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بچے کے دانت آنا نہ شروع ہو اس وقت تک یہ عادت درست ہے, یہ مفید ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کے لیے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے دودھ کے ہضم کے لیے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ جو بچے انگوٹھا چوستے ہیں ان کے لیے دودھ اور دیگر غذائیت جو آگے عمر میں دی جاتی ہے اس میں ہاضمہ آسانی سے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ بچوں کے سانس لینے کی پیٹرنز اور دل کی دھڑکنیں, یہ سب بھی ایک درست پیٹرن پہ آ جاتے ہیں. وہ بچے تحقیقات کہتی ہیں کہ وہ بچے جو انگوٹھا چوستے ہیں ان کو دل کی بیماری بھی کم ہوتی ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں.
فائدہ مند بات ہے.
جی بالکل. قدرت نے ہمارے اندر کوئی بھی ایسی چیز پیدا نہیں کی جس سے ہمیں کوئی فائدہ
نہ ہو.
جی بالکل. اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے جب انگوٹھا چوستے ہیں تو جیسے چوستنے کے عمل میں زیادہ سلائیوا پیدا ہوتا ہے, زیادہ تھوک منہ میں آتا ہے, اس سے ہی ڈائجیشن اور ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے.
اچھا, تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور اکثر دیکھا گیا بچے اتنے دل و جان سے یعنی یہ انگوٹھا چوس رہے ہوتے ہیں, اتنی مزے سے چوس رہے ہوتے ہیں, تو میں سوچ رہی ہوں اس میں کوئی فلیور ہے یا کیا ہے جو اتنی خراب ہوا ہے. خیر اس سے موضوع سے ہٹ کے آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اگر ایک بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے تو اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں اس کے یا نہیں؟
اس عمر تک جب تک اس کے دانت آنا شروع نہ ہو तो ये इसके लिए बहुत मुफीद है।
ठीक है,
अब जिस तरीके से 4 साल की उम्र के बाद या दिगर आगे सालों में अगर उसके दांत आना शुरू हो जाए, यानी जबड़े में अगर आपको दांत नज़र आए उस वक्त तक अगर ये अंगूठा चूस रहा है तो ये थोड़ी परेशानी की बात है। यूँ कोई निज़ाम में कोई परेशानी नहीं आएगी, सिर्फ दो इशू हो सकते हैं, या तो बच्चे के दांत जब वो प्रेशर से अंगूठा चूसता है तो आगे के दांत की तरफ ज़्यादा प्रेशर होता है इसलिए वो दांत बाहर आ सकते हैं,
ठीक है,
और नीचे के दांत अंदर जाने के खतरे होते हैं।
सही।
इसके अलावा वो बच्चा स्पीच इसी मुश्किल की वजह से उसमें ड और ट के जो
तोतलापन आ जाता है, बोल दीजिए जिस तरह ना,
अगर वो ज्यादा दांत आने की उम्र तक अंगूठा चूस उससे पहले कोई खतरा नहीं,
कोई खतरा नहीं है,
उससे तो पहले मुफीद है।
अच्छा, और एक बात ये कि अक्सर देखा गया बच्चे जो होते हैं वो 9 साल तक की उम्र में भी चले जाते हैं, और मैंने खुद देखा है हमारी फैमिली में काफी ऐसे बच्चे थे जो ये काम करते थे, अंगूठा चूसते थे, आप कुछ भी करो तो वो निकालते नहीं थे मुँह से, एक आदत सी बन गई थी, यानी वो चूस के ही सोना है या जो करना, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए कि उनको रोका जाए कि आपके लिए अंगूठा ना चूसे।
असल पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आपको बात सुन के हैरत होगी कि बच्चा पैदाइश से पहले ही माँ के शिकम में अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चला है कि बच्चा अंगूठा चूसता है। 15 हफ्ते कबल डिलीवरी से पहले, पैदाइश से पहले से लेके 4 साल की उम्र तक अगर चूस रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस अमल में, इस पीरियड में उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आपको लगे कि खतरा बढ़ रहा है, जैसे आपको लगे ये आदत, ये रिफ्लेक्स अब एक आदत की शक्ल आ चुकी है, तो उस वक्त हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये वक्त ही ना आए कि बच्चा 9 साल की उम्र तक अंगूठा चूसते रहे।
अच्छा।
जब आप देख रहे हैं कि अगर आपका बच्चा 4 साल की उम्र तक पहुंच गया है, अब उसके लिए वो मुफीद नहीं है, अब उसके लिए दीगर गिजाइत है, और अब उसका खाना पीना शुरू हो गया है, अब वो प्रॉपर सो रहा है, तो उसके लिए अब अंगूठा चूसना कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं उसके लिए, तो हमें चाहिए उस वक्त ही से रोकना शुरू कर दें।
डॉक्टर साहब, अभी आपने रोकने की बात की, एक सवाल जो ये वालन के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत अहम सवाल रहेगा, कैसे रोका जाए, बच्चे तो सुनते ही नहीं है, आपने देखा होगा लाइक वो एक होती कि जिद है भाई नहीं चूसना है, और अगर आपने निकाल दिया तो रोना धोना चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा, क्या किया जाए कि बच्चे को इस काम से रोका जाए।
एक उम्र तक हम घर में रोकने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 4-5 साल तक का है तो हम घर में किस तरह रोकें, सवाल ये है कि हम घर में थोड़े बच्चे के लिए कानून सेट करें, इसके अलावा हम बच्चे को कुछ तोहफे की लालच दें, और जिस दिन जिस हफ्ते बच्चा अंगूठा ना चूसे हम उसकी तारीफ़ करें, हम उसको ये दिखाएं कि वो जब शीशे में, हम उसके सामने शीशा रखें कि जब वो अंगूठा चूसता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसकी शक्ल कैसी लगती है।
अच्छा।
और हम उसको तस्वीर दिखा सकते हैं उन बच्चों की जो अंगूठा चूसते हैं, फिर वो बड़े होते हैं उनके दांत कितने बदसूरत हो जाते हैं, इसकी वजह से उनकी शक्ल कितनी बदसूरत हो जाती है, ज़बरदस्ती अंगूठे पर लाल मिर्च नमक ये सब लगाने वाली जो तरकीब है ये इसलिए मुफीद नहीं है कि बच्चा उस वक्त तक तो वो आदत को शायद छोड़ देगा, उस वक्त तक ये अमल को छोड़ देगा, लेकिन जब उसको ज़रा सी छूट मिलेगी तो वो इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से करेगा कि ये उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा।
सही, ठीक है।
तो कोई भी आदत, हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास कोई अगर बुरी आदत है तो हम उस एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए एक अच्छी आदत अडॉप्ट करें।
बिल्कुल।
अब हम अगर आपका बच्चा सोने के वक्त अंगूठा चूसने का आदी है तो हम इसके लिए कर सकते हैं कि बच्चे को सोने के वक्त कोई कहानियों में इन्वॉल्व करें कि वो बच्चा अपना असल में अंगूठा उस वक्त इसलिए चूस रहा है कि उसको इत्मीनान मिलता है, उसको एक सुकून मिलता है सोने के, तो जब हम उसको अगर कोई दूसरी सोर्स प्रोवाइड कर दें इन सब चीज़ों के लिए तो वो उस चीज़ से आहिस्ता
इस तरह से उसका ध्यान बटा दें जिस चीज़ में,
ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व कर दें। अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो आप उसको ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व कर दें कि वो उस अमल से दूर हो जाए।
ठीक है।
और बेस्ट ये है कि हम घर में एक चार्ट बना लें।
अच्छा।
बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी, हम हफ्ते में जितने 7 दिन में हम उस चार्ट में रंग भरें और ये देखें कि अगर बच्चा पूरा हफ्ता अंगूठा नहीं चूस रहा तो उसको एक छोटा सा तोहफा दिया जाए, इससे बच्चा खुद भी इनोवेट होगा और हमारे लिए भी आसानी होगी कि अब आदत छूटने का अमल शुरू हो गया है।
डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है हमारी यहाँ पे, और यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा नाजरीन, ताकि जाके थोड़ी ताज़ी ताज़ी हवा खा के आए, स्टूडियो की बाहर की ठंडी वाली हवा खा के आए, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
बिल्कुल। बहरहाल हमने आपको जो है ईरानी नाश्ते की थोड़ी सी हवा खिला दी है कि कैसा होता है ईरानी नाश्ता। बहरहाल चलते हैं रुबाब की तरफ और रुबाब जो है गुफ्तगू आगे।
मैं यहाँ माजरत के साथ कहना चाहूंगी, यहाँ पे नाश्ते का सीन देखना था, मैंने कहा थोड़ी ठंडी हवा खा रहे थे, खैर कोई बात नहीं, हमने चाय वाय देख ली, कोई बात नहीं।
अच्छा है बंदा, असल जो वो होता है मसला होता है ये कि थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बहस से बाहर निकला जाए और फिर वापस आया जाए।
यहाँ पे हमने चाय देख ली और चाय देखने के बाद काफी रिफ्रेश हो गए
देखने से।
बिल्कुल। फिर चलते हैं मौजू की तरफ वापस, और डॉक्टर साहब एक अहम मसला बहुत ये है कि बच्चे छोटे होते हैं, हर चीज को हाथ लगा रहे हैं, बेचारी माएँ भी काम में इनका ध्यान बटा रहता है, हर चीज़ को हाथ लगा रहे हैं और फिर ये अंगूठा वापस मुंह में जा रहा है, तो एक तरह से मैं बोल सकती हूँ इस जरासीम का भी सोर्स है अंदर जाने का पेट में, या ये नहीं
जी बिल्कुल। जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, वो अपने हाथ पाँव नहीं एक महदूद
एरिया में ही रहता है, वो शैतानी नहीं कर पाता
जी, तो वो जरासीम के अंगूठे तक पहुंचने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है
बिल्कुल,
तो दांत के अलावा एक ये भी इशू है कि अंगूठा उसके लिए काफी बीमारियों का सोर्स बन सकता है।
अच्छा।
बच्चा इधर खेल रहा है फिर अगर वो आदी है तो फौरन से अंगूठा मुंह में डाल दिया, मट्टी से उठाया या जो भी।
और वैसे बच्चों को बड़ा मज़ा भी आता है, पता नहीं इस बात में नाजन आपने दिक्कत की होगी कि अक्सर हाथ जब मिट्टी में जाता है तो वो मिट्टी के बाद फौरन मुंह में चला जाता है, वो क्या मज़ा है क्या टेस्ट है मुझे पता नहीं, खैर ये मैंने देखा है बहुत से बच्चे काम करते हैं। और एक और मसला जो जरासीम की बात हो गई, फिर देखा गया जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं एक तो उनके अंगूठे का तो शेप ख़राब हो जाता है या स्किन की बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं
जी बिल्कुल, जिल्द ऐसी चपटी हो जाती है, नाखून उगने में मसला होता है वो अंगूठे का जिसमें वो चूस रहा है।
अच्छा,
ये सब प्लस अगर वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से चूस रहा है तो नाखून में इन्फेक्शन भी हो सकता है कि अगर यहाँ की कोनियों की जिल्द किनारों की जिल्द अगर उखड़ना शुरू हो गई है तो इन्फेक्शन का सोर्स भी बन सकता
तो
है।
तो ये बोल सकते हैं वो साथ साथ में इन्फेक्शन भी अंदर पेट में ही जा रहा होगा, उसको आगे मसाइल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात कि हमें कब इस बात के लिए कदम उठाना चाहिए, हमें कब इस बात का एहसास हो कि ये अब बच्चे की आदत बन रही है, यानी वो हमें कब पता चलेगा, माँ कब इस बात को पहचान सकती है कि ये बच्चे की आदत बन रही है। ये
खतरे की बात ये है कि अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल की उम्र में, अक्सर ये भी देखा गया है कि बच्चा अंगूठा चूसते वक्त अपने बाल भी खींचता है, अपने बाल भी नोचता है।
सही।
तो ऐसे बच्चे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो छोटी उम्र में ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 साल का हो या कुछ माह का हो या 2 साल का, उस वक्त भी उसको रोकने की कोशिश की जाए।
ठीक है,
एक तो ये हो गई। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 4 से 5 साल की उम्र का हो गया है और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अभी भी बच्चा अंगूठा चूसने का उसी शिद्दत से आदी है,
सही,
तो ये दूसरा मौका है कि हमें उसके रोकथाम के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है मॉन्टेसरी में, तो अगर बच्चा अंगूठा चूस रहा होता है तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये इसके लिए उसके दिमाग पर साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़ सकते हैं।
ठीक है,
तो इस पॉइंट पे भी उसको रोकना पड़ेगा।
अच्छा, तो अभी अपने साइकोलॉजी की तरफ थोड़ा वो किया, तो एक बात मेरे जहन में, मैंने इंटरनेट में कहीं पढ़ा था कि जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं बड़ी उम्र तक उनको यही नफसियाती मसाइल में रहते हैं, तो वो उस वजह से ध्यान बटाने के लिए अंगूठा चूसते हैं, ये बात ठीक है?
जी बिल्कुल ठीक है, जब बच्चा बड़ी उम्र में आने लगता है और स्टिल वो इस आदत को अपना हिस्सा समझता है।
ठीक है,
अक्सर बच्चे अंगूठा चूसने को स्ट्रेस, खौफ या इत्मीनान हासिल करने के लिए या बीमारी के खिलाफ हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है,
तो हमें जब कॉज अगर हम आइडेंटिफाई करें तक, तो फिर हम अपना हदफ समझ सकते हैं कि किस चीज़ को हमें दुरुस्त करना है, क्यों हमें दुरुस्त करना है।
सही, ठीक है। डॉक्टर साहब अब तो हमने यहाँ तो छोटे बच्चों की बात तो हो गई हमारी, कि हम चले छोटे बच्चे को बता सकते हैं, आप शीशा दिखा दिया आपने कि भाई आप अच्छा नहीं लग रहे हो या इस तरह। एक बच्चा जो बड़ा हो गया है, 7 साल की उम्र से निकल गया है और अभी तक वो अंगूठा पी रहा है, उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि वो बात भी समझ रहा है हमारी और ये समझ रहा है कि ये गलत है, उसको किस तरह समझाया जाए?
अगर बच्चा ये इस बात पर आपके साथ एग्री है कि ये अमल गलत है और वो अब चाहता है कि उसकी आदत को दुरुस्त किया जाए, तो अमल और आसान है। आपको उसको डेंटिस्ट के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको घर में ही, जब उसको लगे कि वो अंगूठा चूसने के, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा खौफ के वक्त अंगूठा चूसता है, 8 साल की उम्र का या 9 साल की उम्र का, उसको कोई खौफ है, अक्सर बच्चे मौसम जो बाहर बहुत तेज़ बारिश होती है उस वक्त भी देखा गया है कि वो बच्चे अंगूठा चूसते हैं, तो हम उसको उस वक्त इत्मीनान तसल्ली दे सकते हैं। अगर हम अगर कॉज आइडेंटिफाई कर लें तो हमें अपने हदफ तक पहुंचने के लिए आसानी होगी।
ठीक है,
अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको समझा कर इस आदत को दुरुस्त किया जा सकता है।
ठीक है, और एक जो अहम सवाल, अक्सर माएँ काम करती हैं बच्चे को अंगूठे की जगह चूसनी बच्चे के मुंह में डाल देती हैं कि चलो अंगूठा ख़राब ना हो, ये किस हद तक दुरुस्त है कि आप अंगूठा निकाल दीजिए उसके लिए चूसनी डाल दीजिए? बात तो वही अमल हो रही है कि बच्चा शक कर रहा है दोनों को, तो कौन सा बेहतर है आपकी नज़र में?
नहीं, चूसनी का भी यही है कि अगर वो दांत आने की उम्र से पहले तक दी जाए तो इतना इशू नहीं है, उसको भी बॉयल करके एक तरीका है उसका पूरा कि किस तरीके से दी जाए, हर दफ़ा उसी तरीके से उठा के नहीं मुँह में डाली जाए। लेकिन बात वही है, अंगूठा और चूसनी का उस वक्त मकसद एक ही है, बल्कि चूसनी के इतने फ़वाद नहीं है जितना अंगूठा जब कम उम्र बच्चे में दिया जाए तो उसके फ़वाद, जिस तरह हमने अभी पहले बात की कि मुफीद है ये
बच्चे के लिए,
दिया जाए उसको उस वक्त तक, उसका चाइल्डहुड इंजॉय किया जाए, उसको करने दिया जाए, इसलिए कि ये अंगूठा चूसने का अमल उसके लिए उस उम्र में जब उसके दांत नहीं आए उससे पहले तक उसके लिए मुफीद है। अच्छा। उसको वो इंजॉय करना चाहिए उस अमल को।
अच्छा, और यानी कभी मतलब अभी बहुत से लोगों को ये भी देखा गया कि जब उनका बच्चा नवजात है यानी एक दो महीने तीन महीने के इतना कि अपने हाथ को मुंह में लेके जा रहा है चूस रहा है तो माएँ फ़ौरन खींच के निकाल लेती हैं, करें या ये काम ना किया जाए?
नहीं, इस अमल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये कुदरत की तरफ से है। आप ये बच्चा कब से आदी है? जब ये माँ की शिकम में था, तो इस ये इस तरीके से खींच के निकालने से वो फिर जैसी माँ उधर हुई वो उसने वापस मुँह में डाल दिया।
ठीक है,
तो इससे जो चीज़ अव्वल तो उस पॉइंट पे तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो फिर आपके लिए की जा सकती है कि उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसके अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए दूसरी सरगर्मियों में इन्वॉल्व करके उस अमल को रोका जाए। लेकिन उस माह में जो आपने बोला कि एक दो महीने का बच्चा है उसमें उसकी ज़रूरत नहीं।
डॉक्टर साहब, अगर ये सब जो आपने बातें की ये सब करने के बाद भी एक बच्चा इस अमल से निकल नहीं पा रहा, अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा, आया आप रेकमेंड करती हैं कि हम उन बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, या ऐसा है कोई थेरेपी या लाइक कोई चीज़ है ऐसी कि डॉक्टर रेकमेंड करे बच्चा इस आदत से निकल पाए बाहर?
देखें, पहले तो डॉक्टर भी अगर हम डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे अपने बच्चे को तो वो इतनी जल्दी कोई दवाई नहीं देगा, या इतनी एक क्रिब्स लगते हैं अब दांतों में जिससे अंगूठे चूसने की जो अमल में एक प्लेजर होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो डॉक्टर ये सब चीज़ें फ़ौरन से नहीं आती।
और बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज़ भी नहीं कुछ आई है अंगूठे पे लगाते हैं प्लास्टर टाइप की, वो भी इस चीज़ के लिए
वो सब चीज़ें वो अमल बाद में आना चाहिए, जब कोई ऑप्शन ही ना बचे। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। हम अगर पहले से ही कोशिश करें कि आपका बच्चा इस आदत में पड़ रहा है तो वो नौबत ही ना है। डेंटिस्ट अगर मैं अपने बच्चे को ये बात बोलूँ कि देखो दांत खराब होंगे ये होगा, तो मेरी बच्चा इतनी आसानी से नहीं सुनेगा बात, जितना अगर वही बात उसको डॉक्टर बोलेगा।
अच्छा, ठीक है, तो उसके जहन में ज़्यादा असर पड़ेगा। जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही मुफीद और बेहतरीन गुफ्तगू का। चलिए नाज़रीन, अंगूठा चूसना सही है या नहीं हम इस बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ हमारे पास वक्त हुआ खुर्रम के पास चलने का। जी खुर्रम,
बहुत शुक्रिया आपका। क्या ख्याल चलते हैं, एक जैसे आप लोगों को भी पता होगा एक मशहूर शायर हैं फारसी ज़बान के, खयाम, उनकी थोड़ी सी शायरी हमने तैयार की है। अगर आप लोगों का मूड है तो चलते हैं खयाम साहब की शायरी
को शायराना कर दें।
बिल्कुल चलते हैं, खयाम साहब की शायरी कुछ अशार हैं वो सुनते हैं, उसके बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और आप लोगों को खूबसूरत सी तस्वीर और उसके साथ साथ बहरहाल शायरी भी सुनी खयाम की। बहरहाल वक्त हुआ है हमारे पास, हमारे जो टेलीफोन पे हमारे साथ डॉक्टर अनायत हुसैन मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं।
जी वालेकुम सलाम, हम भी सबकी सलाम अर्ज करते हैं
डॉक्टर साहब के।
जी दुआएं आपकी, अलहमदुलिल्लाह
ठीक ठाक है डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपको जो है दोबारा हमने डिस्टर्ब किया और आपका टाइम लिया। हमें पता है आपकी रूटीन जो है वो थोड़ी सी सख्त होती है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी आपके बहुत से पेशेंट्स जो हैं टीवी के पीछे बैठ के जो है आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात अंगूठे चूसने के बारे में हो रही है, वक्त महदूद होता है, मैं चाहूँगा कि आप खुद जो इसके बारे में जो आप समझते हैं कि अहम है नुकात उनके बारे में थोड़ा सा इशारा कर दें।
मुख्तसर सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अंगूठे चूसने का जो एक अमल होता है वो बच्चों के अंदर कुछ फितरतन मौजूद होता है, खुसूसन छोटी एज में। मसलन बच्चे जो है वो 5-6 महीने के बाद से जो है ना वो इस अमल को मुमकिन स्टार्ट कर सके, मतलब जो चीज उनके हाथ में आती है वो अपने मुंह में डालते हैं। जब ये थोड़ी सी एज बढ़ती है उनकी तो वो जो है अपने अंगूठा भी जो है अपना हाथ जो है मामूलन अपने मुंह में ले जाते हैं और वो एक एहसास से उनको जो है ना सुकून सा मिलता है। ये अमल कंटिन्यू रहता है, लेकिन अगर मतलब 1-1.5 साल के बाद ये अमल जो है वो बाकी रहे तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है नॉर्मल से थोड़ा सा हट के हो जाता है। इसके अंदर ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं जिसके से ये अमल जो है ना बाकी रह जाता है। जिस तरह बताया कि शुरू की 1 साल से पहले की जो मुमकिन है ये एक फिजियोलॉजिकल एक फेनोमेनन होता है, लेकिन इसके बाद अगर कंटिन्यू है उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है बच्चा जो है वो स्ट्रेस के अंदर हो। स्ट्रेस जो किसी तरह का भी हो सकता है, मसलन जो है वो अब वो कोई चीज भी खुद से काम अंजाम देना चाहे बच्चा उसको जो ना बिला वजह की रोक टोक हो तो ये जो ना उसके लिए स्ट्रेस बायस बनता है। खुसूसन जब बच्चा ये काम कर रहा होता है अपना अंगूठा जो है मुंह में ले रहा होता है, अगर उस वक्त जो है वो बच्चों को जो है ना जबरदस्ती बाय फोर्स कह नहीं करो ये काम नहीं करो बल्कि जोर से ना उसका हाथ खींच के निकाल लें तो बच्चे को ये चीज बुरी लगती है,
हमें
नहीं पता चल रहा होता लेकिन बच्चे को बुरी लगती होती है। और अगर ये चीज जो है ना कंटिन्यू रहे तो फिर जो है ना बच्चा जो है वो छुप के फिर ये प्रोसेस जो ना वो कंटिन्यू रहता है और इसके अंदर जो ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसका जिक्र किया वो स्ट्रेस है।
जी,
तो हमें जो ना बच्चे के स्ट्रेस जो ना जिस टाइम हो सके कम करें, मखसूसन जो होता है कि उसके बहन भाई होते हैं या घर में और दूसरे अफराद होते हैं वो तंग कर रहे होते हैं बच्चे को, या खुदा खासा माँ बाप जो है वो पेरेंट्स हैं वो खुद जो ना वो अपने स्ट्रेस में यानी उनके पास टाइम नहीं होता है या और दूसरी चीजें, तो बच्चा कोई चीज उनसे डिमांड करता है तो वो उसको जो है ना वो डांट डपट से काम लेते हैं, मतलब पनिशमेंट ज्यादा होती है, ये चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को जो ना इस आदत से जो ना छोड़ा जाए।
सही डॉक्टर साहब, रुबाब जो हैं वो उनको जो ये अमल बच्चों का है ये बहुत पसंद है, मेरे ख्याल से वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे।
मैं तो यही पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अर्ज अदब करती हूँ आपकी खिदमत में, और जो दूसरा सवाल है कि बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है वैसे मेरे ख्याल में कुदरती तौर पर, लेकिन अगर हमें इसके लिए रोकथाम करनी हो तो हमें कौन से इकदामात या एक माँ को क्या करना चाहिए कि बच्चा इस हद तक पहुँचे ही ना कि वो अंगूठा चूसे।
देखिए, अगर बच्चा जो है मामूलन जो है वो 1.5-2 साल से जो उम्र के ज्यादा बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर हम चाहें कि इस अमल को रोकें तो उसमें जो पहली चीज ये कि वो ये कि डायरेक्ट ना रोकें, जहां तक हो सके मखसूसन जिस वक्त बच्चा ये काम कर रहा हो उस वक्त जो है हम इनडायरेक्टली जो है वो बच्चे की कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करें। मसलन जैसे उसके जो है वो जो गेम उसको पसंद है हम जो ना उसको बुला ले, या मसल से कहें टीवी ऑन करें, या उसको खाने के लिए बुलाएं, या मसलन जो चीजें उसको पसंद है उस चीज को मशगूल करें, या बोले बाहर चले हैं मसलन फुटबॉल के साथ, या जो भी गेम है उसको पसंद है, इस तरह उसकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगी तो खुद ब खुद वो छोड़ देगा। एक तो ये सेकंड ये कि जो है बच्चे के सामने जो है ना उसकी इस आदत का जो है ना जिक्र ना करें। मखसूसन 2-3 साल से जो उम्र के ज्यादा उम्र के बच्चे होते हैं वो हर चीज को समझ रहे होते हैं, और अगर मसलन खुदसन पड़ोसी आए या कोई रिश्तेदार है उनसे कहें हमारा बच्चा जो हर वक्त जो है अंगूठा चूसता रहता है, ये अगर बच्चे के सामने ये बात आप करेंगे तो बच्चे को ये चीज जो ना बुरी लगेगी, और मुझे जिद में आके जो ना बच्चा मुमकिन है कि बाद में ये काम जो ना एक लाशौरी तौर पे ये अंजाम देगा बच्चा, यानी इस चीज का हतम ख्याल रखें। और फिर जो दूसरी बात होती है कि वो बाय फोर्स जो है जिसका भी जिक्र किया हमने कि उसका हाथ खींचे या उसको डांटे कि ये काम नहीं करो, इसका बल्कि बुरा असर भी पड़ सकता है, इन चीजों का हतम ख्याल रखें और टाइम दे बच्चे को। इसके अलावा एक और चीज है, पूरे दिन में जो है यानी सुबह से शाम तक जो बच्चा जो है जिन चीजों से डिस्टर्ब हो रहा हो, जिसने भी जिक्र किया कि जो है कोई चीज को तंग कर रही है, या मसलन हमारा अपना बिहेवियर जो ना बच्चों के साथ अगर मुनासिब ना हो, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोशिश करेंगे बच्चे को ना रिलैक्स रखें, नॉर्मली साइकोलॉजिकली जो बच्चा रिलैक्स रहेगा तो ग्रेजुअली चीज जो ना वो कम होगी। ये नहीं समझें कि मसलन कि बच्चा जो 1 साल से जो ना अंगूठा चूसा आप चाहेंगे उसको 1 हफ्ते में 2 दिन में जो ना ये आदत की खत्म करें, इम्पॉसिबल है, इसमें जो ना टाइम देना होगा और ग्रेजुअली जो ना ये चीज खत्म हो जाएगी।
डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर सुलेल फातिमा ने कहा कि एक कुदरती अमल है और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रोक दिया जाए शुरू से, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता शुरुआत से ही हम कोई और आदत बच्चे में डालें बजाय इसके कि वो उंगलियां डाले कुछ और मसलन उसको सिखा दें?
देखिए, जिक्र किया कि जो शुरू की जाती है मसलन जिसको हम कहते हैं कि इन्फेंसी पीरियड, उसके अंदर मसलन खुदसन जो है ना वो 7-8 महीने के बाद ये आदत जो है बच्चों के अंदर नॉर्मली पाई जाती है,
ठीक है?
तो उस वक्त जो है ना बिल्कुल जरूरत नहीं होती कि हम बच्चों को जो ना रोके इस आदत से, या मसलन इसको जो ना डाइवर्ट करें किसी और तरह, नहीं, बच्चा खुद ब खुद ये आदत जो है उसकी खत्म हो जाएगी। खुसूसन जो है ना जब बच्चा जो है मसलन 9-10 महीने का हुआ तो जो और उसके अंदर दूसरी स्किल्स उसके अंदर आ रही है, मसलन घुटने के बाद चलने के काबिल हुआ, या मसलन हर जो चीज उसके हाथ में वो उठा के उसने ली, तो उस टाइम हम उसको जो ना साफ सुथरी चीजें होती हैं, या उसके जो टॉयज होते हैं प्लास्टिक के जो हाइजेनिक जो सही हो रीजनेबल हो वो उसके हाथ में दें, तो बच्चा जो ना खुद ब खुद जो ना वो इस आदत को जो है वो डाइवर्ट करके उस तरफ चला जाएगा। उसके हाथ में एक मुनासिब अच्छे खिलौने आ जाए, अच्छी चीजें आए, मसलन खाने पीने की जो मुनासिब चीजें हैं, मसलन एक रोटी का टुकड़ा उसको आप दें मुनासिब, तो वो उसको खाएगा, तो खुद ब खुद ये आदत जो ना वो खत्म होती है। यानी इसमें हमें कोई इतनी खास जरूरत नहीं, लेकिन जो बच्चे इस एज में जो ना किसी भी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, हद देखा गया कि मसलन खुदा ना खासा बच्चे बीमार बहुत हो, यानी सिर्फ ये नहीं कि साइकोलॉजिकली फिजिकली भी जो ना बॉडी पे स्ट्रेस पड़े, तो उसकी वजह से भी ना बच्चे जो ना मुमकिन है कि इस आदत का शिकार हो, कोशिश करें कि जो ना इन सब चीजों से इज्तनाब किए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक बार फिर हमें प्रोग्राम में टाइम दिया और बहुत ही अहम नुकात जो है हमारे नाजरीन के लिए पेश किए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
थैंक यू
जी। तो रुबाब डॉक्टर अनायत हुसैन से भी हम लोगों ने बात कर ली और बड़े अहम नुकात उन्होंने भी बयान किए और उन्होंने भी बताए, तो चलते हैं आप लोगों की तरफ दोबारा, आप लोग अपनी गुफ्तगू जारी
रखें। और डॉक्टर साहब, मेरे जहन में अचानक एक सवाल आया, अक्सर हम बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक होता है और कहते हैं ये आदत माँ को थी तो बच्चे में आ रही है, बाप को थी तो बच्चे में, आया ये बात दोनों से कि माँ बचपन में अंगूठा चूसी से बच्चे में भी ये ट्रांसफर हो या नहीं?
इसका जेनेटिक इतना लिंक नहीं पाया जाता, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि ये एक बच्चे अमूमन तमाम बच्चों में ये अमल है।
सही,
रिफ्लेक्स ऐसा है जो कि मैंने आपको बताया ब्रेस्ट फीडिंग में आसानी के लिए पैदा किया गया है, तो ये कुदरती है, फितरती बच्चे के अंदर है ही ये। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चा शिकम में भी पाया गया है, अंगूठा चूसता हुआ,
ठीक।
तो इसका जेनेटिक लिंक से इतना कोई
ताल्लुक नहीं
है।
डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, यहाँ पे आपने बहुत अहम नुकात की तरफ इशारा किया और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को भी हमारी गुफ्तगू पसंद आ रही होगी। यहाँ हमें चलना है खुर्रम के पास और देखना है खुर्रम आज क्या खबरें लाए हैं।
बहुत शुक्रिया, और मैं भी जो है आ जाऊँगा एलसीडी की तरफ और देखते हैं कि मैं क्या लेके आया हूँ।
जी जी,
मिल के देखते हैं।
बिल्कुल
जी, एक जो बड़ी अहम नुकता है वो ये है कि बच्चों में तालीम का देना, बच्चों को तालीम हासिल करना, इसके बारे में जो है बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये जो एलसीडी है ये अगर काम करे थोड़ी सी, तो मैं जो है आपको तस्वीर भी दिखा सकता हूँ।
लेकिन
हाँ, ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आज जो है ये परेशान लग रही है थोड़ी सी, जैसे वो अंगूठा चूसते हैं जो बच्चे वो परेशान होते हैं। तो बहरहाल इस पर भी बात करते रहेंगे। कहते हैं कि 100 मिलियन बच्चे दुनिया में ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, और उसके पीछे जो है बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की वजूहत हैं। 150 मिलियन बच्चे ऐसे हैं दुनिया में जो प्राइमरी स्कूल में जो है रजिस्टर करते हैं और प्राइमरी की एजुकेशन के दरमियान ही या उसके ख़त्म होते हुए ही वो स्कूल छोड़ देते हैं। और उसमें एक जो सबसे अहम वजह बयान की जाती है वो ये बयान की जाती है कि फीस जो है वो पे नहीं कर सकते बच्चे, उसकी वजह से 90 ममालिक में कहा जाता है कि ये मसला बहरहाल जो है पेश आता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा गया है कि इसके अलावा ये तो नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ख़ास बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके जो मालूल होते हैं या मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से उनको जो है आम जो स्कूल हैं उनमें जो है नहीं डाला जा सकता। उनके बारे में तो कहा जाता है कि उनके तो स्टैटिस्टिक ही मौजूद नहीं है। और सबसे ज़्यादा मसला जो बयान किया जा रहा है वो साउथ एशिया में जो पढ़ाई का बच्चों की पढ़ाई का है उसका बयान किया जाता है। और उसके अलावा ये कहा जाता है कि एक और जो बहुत अहम मसला है वो लोकेशन का है कि आप जहाँ पर आपका आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ पर स्कूल आसपास है या नहीं है, क्योंकि हर बच्चों के पास जो है स्कूल की बस या माँ बाप के पास गाड़ी नहीं होती कि वो बच्चों को अपने जो है टाइम पे स्कूल पे पहुँचा सकें। ये एक बहुत बहुत अहम मसला है। और उसके अलावा साउथ एशिया में ही एक और बड़ा मसला जिसको बयान किया जाता है वो ये है कि कहा जाता है कि जेंडर की बेस पे जो मसाइल पेश आते हैं उसमें जो है 10% का फ़र्क है। यानी साउथ एशिया में अगर 20% लड़के स्कूल जा रहे हैं तो 10% लड़कियां स्कूल जा रही हैं। ये जो है एक बहुत अहम मसला जो साउथ एशिया में बहरहाल बयान किया जाता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं और इन पे जो है बहरहाल बात करनी चाहिए, इन पे जो है गौर फिक्र भी करनी चाहिए।
हुकूमती सतह पर जो होना चाहिए कुछ इकदाम होने चाहिए। अब अगर आप ईरान में देख लीजिए तो मैं अभी नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर एक एबनॉर्मल बच्चों का जो होता है, खास तौर पे यहाँ पे स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन बच्चों में कुछ ऐसी सलाहियतें, अब ठीक है अगर शायद वो ज़हनी तौर पे पीछे हैं हमसे तो कोई ऐसी नहीं, लेकिन उनको हाथ के काम जो होते हैं जैसे हम बोलते हैं हुनर, वैसी चीजें सिखाई जाती हैं कि वो अपनी रोजी रोटी किस तरह से निकाल सके। और ये बहुत अच्छी बात है,
बिल्कुल उनको छोड़ नहीं देना चाहिए बिल्कुल कि वो अगर नहीं पढ़ पाते तो बस बिल्कुल उनको छोड़ दिया, वो आखिर में तो वो बेचारे क्या करेंगे। बहरहाल यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक और पल तूत के ख़ानदान से जिसको अंग्रेज़ी में बिल बेरी का नाम दिया जाता है और आपको जो है बहरहाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में शायद कम मिले, लेकिन जो है कैन की शक्ल में शायद आपको ये मिल जाए। इसके फ़वाद में सबसे सहरफेस्ट बहुत अहम फ़ायदा जो है उसका आई साइट का है, नज़र का है। और इसके बारे में अगर मैं ये जुमला बोल दूँ तो इसके बाद जो है बात ख़त्म हो जाती है। वो ये कि जंगे जहानी दो जो थी उसमें कहा जाता है कि पायलट्स जो थे उनको बिल बेरी खिलाई जाती थी ताकि उनकी रात को देखने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाए। अब इसमें कितनी हकीकत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहरहाल यहाँ पर आर्टिकल में ये चीज़ लिखी हुई थी। इसके अलावा कहा जाता है कि दिल का दर्द जो बहरहाल दिल के मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उससे बचने के लिए बहुत मदद करती है। आप जनरली इसके बारे में कहा जाता है कि जो खून की गर्दिश है बदन के अंदर इंसान के उसके लिए बहुत अच्छा किस्म का फल है। जिन लोगों के इस तरह के मसले, डायबिटीज़ डायबिटीज़ के मरीज जो हैं उनको कहा जाता है इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो खून के अंदर शुगर है उसको कंट्रोल में रखते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते। ये बहुत अहम इसका जो है फ़ायदा है। टैनिन्स नाम का एक केमिकल इसके अंदर होता है, फ्लेवोनोइड्स इसके अंदर होते हैं। जो बहरहाल फ्लेवोनोइड्स के बारे में डॉक्टर आतिया निशात ने भी हमें बताया था कि जो है एंटीऑक्सीडेंट की एक बहरहाल टाइप है, फलों में पाई जाती है। और डायबिटीज़ के ज़ियाबतीज़ के भी मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों में जो है हमारे पास आर्टरीज़ या नसें हैं उनके मसाइल पेश आ जाते हैं आँखों में और किडनी में। तो बहरहाल जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें, और जो चाहते हैं कि उनकी आँखें सलामत रहें वो भी इसका इस्तेमाल करें। चलते हैं हमारे पास इस्फहान से एक मस्जिद है, उसके बारे में हमारे पास रिपोर्ट है, वो देखेंगे और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और प्रोग्राम को आगे चलाएँगे।
صفوی دور اصفہان کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ صفویوں کی حکومت کے زمانے میں اصفہان اور دیگر علاقوں میں نہایت اہم عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں جو آج بھی باقی ہیں اور جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ انہیں عمارتوں میں سے ایک مسجد حکیم ہے جو سیاحوں اور تاریخی عمارتوں کو دیکھنے کے شوقین افراد کی نظروں سے پنہاں رہی ہیں۔ مسجد حکیم ایران کی اسلامی معماری کا شاہکار ہے۔ اس مسجد میں چار ایوان ہیں اور ان میں اینٹوں کا نہایت ہی دیدہ زیب کام کیا گیا ہے۔ اینٹوں کے اس مختلف نو کام کو دورہ صفویہ کے شاندار ہنر پاروں میں شمار کیا گیا ہے۔ مسجد حکیم میں متعدد محراب ہیں جنہیں شبستانوں کے تناسب سے بنایا گیا ہے۔ مسجد حکیم میں اونچے اونچے ایوان، گرمیوں اور سردیوں کے شبستان اور طاق ہیں جن میں نہایت ہی خوبصورت سجاوٹ کا کام کیا گیا ہے۔ مسجد کی پہلی عمارت آل بویا کی حکومت میں صاحب بن عباد نے بنائی تھی اور اسے مسجد جامع جورجیر کہا جاتا تھا۔ جیسا کہ بتایا گیا، اس مسجد میں چار ایوان، ایک گنبد اور کئی شبستان ہیں۔ اس کا ایک بڑا صحن بھی ہے۔ مسجد کی موجودہ عمارت کو قدیمی اور اصلی عمارت پر ہی استوار کیا گیا ہے۔ اس میں طاق اور قوسیں نہایت ہی خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مسجد کے طاق دوسری طرف بھی کھلتے ہیں۔ صحن میں ایک حوض ہے جہاں نمازی وضو کیا کرتے تھے۔ حوض کے دونوں طرف مہتابیاں بنائی گئی ہیں۔ مسجد کے صدر دروازے سے ہوتے ہوئے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں مسجد کی ماقلی سجاوٹیں دکھائی دیتی ہیں جو نہایت خوبصورت اور پابرجا ہیں۔ اسی طرز پر مسجد کے بیشتر حصے کی سجاوٹ کی گئی ہے۔ ماقل سے مراد وہ سجاوٹ ہے جو کاشی اور اینٹ کے کام کو ملا کر کی جاتی ہے۔ اس مسجد میں مسجد امام اور مسجد شیخ لطف اللہ کے برخلاف سترنگی اور مورخ کاشیوں سے تمام فضا کو نہیں سجایا گیا ہے۔ تاہم اس کی سادہ اور بے آلائش سجاوٹ جو کاشی اور اینٹ کی ترکیب سے عبارت ہے اپنی مثال آپ ہے۔ اس مسجد کے کتبے بھی استاد فن محمد رضا امامی اور محمد باقر شیرازی نے بنائے ہیں جو عہد صفوی کے مشہور خطاط تھے۔
جی ناظرین، آپ لوگوں نے مسجد حکیم کی سیر کی، اس فان امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ بہرحال ہمارا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے کہ رضایت، انسان راضی رہے جو زندگی کر رہا ہے اس کے اس سلسلے میں۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کہیں گی۔ جی ڈاکٹر صاحبہ،
پہلے تو میں تعریف کروں گی کہ بہت بہترین ٹاپک ہے، بہت بہترین موضوع ہے ہفتے کا۔ راضی رہنے کی جہاں تک بات کی جائے، انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان اپنی کسی بھی چیز سے راضی نہیں ہوتا۔ اس کے پاس اگر وہ ادھر ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ادھر ہو، اور پھر یہاں ہوتا ہے تو وہ اپنے اوپر والے کو دیکھتا ہے۔ بہترین چیز یہ ہے کہ جب انسان کوئی درجہ پا لے تو اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے نیچے والے کو دیکھے، تاکہ جب وہ ان کو دیکھے گا تو وہ خود راضی رہے گا۔ اور خدا سے قرآن میں بھی ہے، بہترین رضا وہ ہے جس سے خدا راضی ہے۔
بالکل،
جب انسانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل میں یہ ہر وہ عمل کریں جس سے خدا راضی ہے۔
بالکل، اور یہ بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ ہمیشہ ہمیں اپنے سے جو نیچے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور اپنے سے اوپر والوں کرنا۔ جی خورا
جی، میں یہاں پر فیصل مرتضوی صاحب نے ایک بہت خوبصورت شعر لکھا ہے، وہ میں پڑھ لوں۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ बहुत बहुत खूबसूरत जो है शेर, बहुत इसका जो है एक बड़ा इसमें सोचने का मकाम है। हम जो इस पे बहरहाल सोचें कि ऐसा क्यों होता है। बहरहाल प्रोफेसर मुर्तजा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जो है ये हमारे साथ जो है तस्वीर जो है शेयर की। बहरहाल डॉक्टर सुलेल फातिमा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ और उन्होंने जो है इतने अहम मौजू पर अहम नुकात हमारी नाज़रीन की खिदमत में पेश किए। मुझे और रुबाब को प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी से तेहरान स्टूडियो से कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।